મારા જીવન સદા પાપે રત, નાહી તપને
Yeah.
तीनों ठाकुर भगवान के चरणों में दुख निवेदन करते हैं। एक वैष्णव का दुख क्या है, उनको कपड़ा न मिले, प्रसाद न मिले, सुविधा न मिले, सम्मान न मिले, ये दुख नहीं है। उनका दुख यह है कि भगवान का शुद्ध भक्त वैष्णव का संग मिलने के बाद भी मेरे में वैष्णवता के गुण क्यों नहीं आते, ये उनका दुख है। संसारिक या शारीरिक सुविधा न मिलना ये दुख नहीं है। भगवान के चरणों में भक्तों के संग में होते हुए भी मेरे में भक्ति के भाव क्यों नहीं उदय होते, और मेरे अनर्थ मेरे दोष क्यों नहीं जाते, ये दुख होता है भक्तों को। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा था, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। संसार में अनेक प्रकार के दुख है, इसमें सबसे बड़ा दुख क्या है, टॉप मोस्ट ऑफ डिजायर, सबसे बड़ा डिसीज, सबसे बड़ा दुख। रामानंद राय ने यही कहा कि भगवान विष्णु के प्रिय भक्त का संग न मिलना ये सबसे बड़ा दुख है। कृष्ण भक्त संग बिना दुख नहीं आए, भक्तों का ये दुख होता है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते, से सब संगीर संगे जे कैल विलास। भगवान के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद रूप सनातन आदि गोस्वामी, उनका संग तो नहीं मिला, लेकिन उनके साथ जो संग किए उनका भी नहीं। ये सब संग गौरांगीर गुणेर निधि कोथा गेले पाबो, तो गौरांग के गुणों से अभिषित उसको मैं कहाँ पाऊँ। तो उसमें अंतिम लाइन में कहते हैं कि से सब संगीर संगे जे कैल विलास, ते संग न पाइया कांदे नर कमला। उन भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर रो रहे। तो दुख यही है कि भगवान का दर्शन, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण भक्तों के संग बिना होता नहीं, और वो संग नहीं मिलता। भक्तों का सत्संग नहीं मिल रहा, इसलिए अनर्थ दोष जा नहीं रहा, कृष्ण के प्रति भक्ति प्रेम प्राप्त नहीं होता। तो भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के चरणों में दुख निवेदन करते हैं। ये दुख नहीं निवेदन करते कि हमारा बच्चा नहीं मान रहा है, भक्ति का दुख, अपना दैन्य अपना दोष दिखाए। हे प्रभु, अमर जीवन, मेरा जीवन ऐसे ही पाप कार्यों में बीत गया। संसार के लोग यही जानते हैं कि जुआ खेलना, चोरी करना, नशा करना, ये पाप है। पाप की परिभाषा विद्वानों ने, संतों ने, शास्त्रों में दी है, कृष्ण भक्ति के अलावा जो भी कार्य करना वो पाप है जी, चाहे फिर वो गृहस्थ धर्म ही क्यों ना। पाप की ये परिभाषा, जिस कार्य में भगवान भगवान को जीव भूल जाए वहीं से पाप प्रारंभ हो जाता है। बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है। फिर आप संसार का कोई भी धर्म करते, इसीलिए कृष्ण ने कहा सर्वधर्म, चाहे आप पिता का धर्म निभा रहे हो या देश धर्म, राज धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, जीव के जितने उपाधिक धर्म है, उपाधिक मतलब ऊपर से डाल दिए गए हुए, टोपी जैसे पहनते ना, ऊपर टोपी पहन, ये उपाधिक धर्म है। वी वास्तविक जीव का धर्म है कृष्णदास सेवा, लेकिन संसार के शारीरिक और मानसिक धर्मों में अज्ञान वश जीव इतना उलझा हुआ है कि अपने वास्तविक धर्म को, कृष्ण सेवा को भूला हुआ। दुख का कारण यही है मूल। तो विचार करने पर, इन सारी बातों पर भक्त को चिंतन करना चाहिए। एक बुद्धिमान वैष्णव सदैव पाप में मेरा जीवन रत, रत माने निमग्न होना। और पाप क्या है, भगवान की भक्ति के अलावा किया हुआ सारा कर्म। उद्देश्य अगर भगवान नहीं है, भगवान की प्रीति परस्प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो पाप ही है, पाप की ही वासना। क्योंकि कौन काम क्रोध प्रकट करेगा, ना ही का पुण्य रे लेश, लेश माने एक बिंदु, गुजराती में भी लेश के। पुण्य का एक बिंदु भी नहीं है, पूरा जीवन पाप में, ऐसा था नहीं भक्ति विनोद ठाकुर का। लेकिन एक भक्त हमेशा अपना उदाहरण प्रस्तुत करता है, और वो ऐसा नहीं है कि उनमें ये दोष नहीं है, फिर भी जैसे हम लोग कहते हैं प्रभु जी मैं बहुत पापी हूँ, ऐसे कहते हैं, हम लोग यही मानते हैं कि मैं ही शुद्ध हूँ, लेकिन बाहर ऐसे कहते हैं, मेरा अनुभव है, हम लोग प्रभु जी कृपा करिए हम तो बहुत पापी हैं, ऐसे बोलते हैं केवल, अंदर हृदय में ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ी पापी हूँ, इतना सब कुछ छोड़ के ऐसे वाणी में बोलते हैं, हृदय में नहीं होता है, ये इनका हृदय का भाव है, वो सही में अपने को अनुभव करते हैं कि मैं, मेरे में पुण्य नहीं है, इसी को दैन्य कहा जाता है, केवल वाणी से। भक्त लोग बाहरी समाज में हम देखते हैं, हम लोग जैसे वो बाहरी वाणी में बोलते हैं, हृदय में ऐसा मानते नहीं है, अगर कोई उनको गलती बता दे तब पता चलेगा, तुरंत उनसे साथ उनके साथ युद्ध हो जाएगा, वाक युद्ध, और वाक युद्ध में अगर शांत नहीं हुए तो फिर वास्तविक युद्ध भी हो सकता है, है ना। वाक युद्ध मतलब वाणी से युद्ध करना, बोलना चाहिए। लेकिन ये भक्तिनाथ ठाकुर का हृदय का भाव है कि हमने कोई पुण्य नहीं है, पूरा जीवन पापों में बिता दिया है। परे रे उद्वेगे, दूसरे को मैं हमेशा उद्वेग दिया, उद्वेग शब्द का अर्थ होता है वेग प्रकट कर देना, जैसे क्रोध एक वेग है, मैं ऐसा ही आचरण किया और ऐसा ही वाक्य बोला कि हमेशा दूसरों के क्रोध या काम प्रकट हो जाए, कष्ट दिया दूसरों को, चित्त में शोभता दिया मैं, जैसे कोई समुद्र में जैसे कभी कभी तरंगे बहते हैं तो आंदोलित होता है पूरा जल, ऐसे व्यक्ति का चित्त शांत होता है मन, लेकिन आप उसके सामने ऐसा बोल दो, ऐसा कर दो तो वो कष्ट में उनको दुख लगता है, उद्वेग विकार कहते हैं इसको। आ गया दिया छी जे कत, दूसरों को हमेशा मैं क्लेश ही दिया, दिया छी जीवे र क्लेश, सब जीवों को मैं अपनी वाणी से अपने वाचरण से केवल कष्ट दिया। क्यों ऐसा कर किया आपने, निज सुखे लागी, अपने सुख के लिए दूसरों का बुरा किया। पापे ना ही डरी, पाप से डरा नहीं, संत लोग कहते हैं मत करो ऐसा, शास्त्र मना करता है, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ यम से, पाप से डरा नहीं, और अपने सुख के लिए दयाहीन हो गया, हृदय में कोई दया नहीं, क्यों, क्योंकि स्वार्थ पर, मैं अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया कि दूसरों के योग क्षेम का कोई विचार नहीं, दयाहीन व्यक्ति हूँ, स्वार्थ से भरा हुआ हूँ और पाप से डर नहीं रहा हूँ और अपने शारीरिक सुख के लिए कार्य कर रहा हूँ, ये बात। पर दुख सुखे दुखी, अच्छा आप दुखी क्यों होते हैं, जब दूसरा कोई व्यक्ति सुखी हो जाए तो यही मेरा दुख है कि ये सुखी कैसे हो गए। पर सुखे दुखी, मेरा ऐसा दुष्ट बुद्धि है, अपवित्र अंतकरण है कि दूसरा कोई सुखी हो जाए हमको दुख होता है, किसी को बस गाड़ी मिल जाए, किसी को धन मिल जाए, किसी को मान मिले, सम्मान मिले, सुविधा मिले तो दुख लगता है कि उसको कैसे मिल गया, जबकि संतों का बिल्कुल उल्टा होता है, किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा मिले तो वो सुखी होते हैं और उल्टा आशीर्वाद देते हैं कि आपको मिले, भगवान से भी कामना करते कि इनको दीजिए, ये भक्त का हृदय है। पर पीड़ा जैसे वैष्णव नरसिंह मेहता पीड़ पर आई जाने, दूसरों की पीड़ा को समझता है, लेकिन यहाँ ऐसे उल्टा है, ऐसा है नहीं लेकिन दैन्य है उनका। सदा मिथ्याभाषी, ये सबसे बड़ा दोष है मिथ्याभाषी, कृष्ण के अलावा संसार का कुछ भी बोलते हैं वो मिथ्या माने झूठा, सत्य है नहीं, ना तो ये शरीर सत्य है, सत्य मतलब रहने वाला नहीं है, अशाश्वत है ना, ना ये संबंध सत्य है, ना ये जगत सत्य है कि नहीं, और हम इसी की चर्चा करते हैं, मतलब झूठा ही बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति जैसे संसार में कहे कि मैं झूठ नहीं बोलता, अगर वो कृष्ण के नाम के अलावा कथा के अलावा कुछ भी बोलता है तो झूठ ही बोल रहा है, भले सत्य हो, क्योंकि अल्टीमेट तो जिसकी चर्चा कर रहा है वो झूठ है, मिथ्या, आप समझ रहे हैं ना इस बात को, सत्य वस्तु है भगवान, भगवान की लीला, उनकी कथा, उनका नाम, इनके अलावा अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो तत्व मूल ही झूठ है, तो आपका बोलना भी उसके विषय में होने के कारण झूठा ही हुआ ना, मिथ्याभासी। ये तो ज्ञान के स्तर की बात है, लेकिन यहाँ पर भाव यह है कि मैं हमेशा झूठ बोलता रहा दूसरों के प्रति। मिथ्या शब्द का एक अर्थ ये भी होता है कि बकवास, फालतू बोलता रहा, कौवा की तरह काव काव। देखिए ना संसार में घर गृहस्थी में जो लोग लगे हैं, हम लोग घूमते देखते हैं ना, केवल यही चर्चा, इसने ये किया, इस नेता ने ये किया, बाजू वाले ने, तो यही कचरा प्रजल्प कहते हैं लोग, यही चर्चा करते। किसी के घर आप बैठ जाइए, रास्ते पर मिलिए, क्या चर्चा है? बस यही मिथ्या बकवास, केवल व्यर्थ दिव्य कीमती आयु को, भगवान के द्वारा मिला हुआ इस समय को केवल व्यर्थ गवा देना। लोग यही बोलते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं। तो सदा शब्द देते हैं कि मैं हमेशा यही करता रहा, पर दुख सुख कर। सुखी कब होते हैं? दूसरे को दुख देकर सुखी हो रहा हूं। अशेष कामना रिधि माजे मोर, शेष मतलब समाप्त हो जाना, अशेष माने अनलिमिटेड, कभी खत्म ना होना। कामना, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, एक पूरी है तो दूसरी दस खड़ी हो जाती है। आशा तृष्णा मिटे नहीं, आशा इच्छा तृष्णा जो भी कहिए, कामना तो अशेष है, इनका कोई एंड नहीं। भगवान गीता में कहते दुष्पूरेण न लेन च, हो ही नहीं रहा, खत्म नहीं हो रहा। रिधि माजे मोर, माजे मतलब मेरे हृदय में अशेष कामना है संसार के विषयों की, क्रोधी, और वो पूरी नहीं होती है। कामेश काम मात क्रोधो विजाये, क्रोध हो जाता है, मैं चाहता हूं कि ये ऐसा करे, नहीं करता है तो रुद्र स्वरूप हो जाता है, प्रलय के समय जो भगवान का होता है शिव जी का, रुद्र बन जाते हैं, एकादशी और बारवा रुद्र मदमत्त सदा, हमेशा मत्त रहता, मत मतलब नशे में चूर कोई व्यक्ति, जैसे कोई उसको भान न रहे, ज्ञात न रहे, ऐसा रहता हूं। किसमें? विषयों में, खाने में, सोने में, पीने में, संसार के शब्द रस रूप, इन विषयों को भोगने में मैं मस्त हूं एकदम। और एक बड़ा सुंदर गहना मैंने पहना है, आभूषण, बिना ठाकुर लोग गहना पहनते हैं ना, श्रृंगार करते हैं, अपने नेकलेस पहनते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेसलेट, अंगूठी, बिटिया आदि पहनते हैं। लेकिन ठाकुर कहते हैं हमने भी एक पूरे, ये लोग तो एक एक अंग में पहनते हैं, हम तो पूरा शरीर में एक गहना पहना हूँ। किसका? हिंसा का और अभिमान का, हिंसा गर्व विभूषण, हमने भी गहना पहना है। हिंसा दूसरों के प्रति, हिंसा दूसरों को मारना काटना गलत सोचना, और अभिमान, मैं हूँ, मैंने किया, मेरे से ही तो चल रहा है, मैं न होता तो, गर्व जिसको मिथ्या फलसी, तो मेरा आभूषण है गर्व और हिंसा। हिंसा माने दूसरों को कष्ट देना, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परोपकाराय पुण्याय पर पीड़ा सम, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। व्यास जी ने महाभारत में बहुत सुंदर श्लोक लिखा है कि अष्टादश पुराणेशु, 18 पुराण जो है और जितने वेद शास्त्र है उनका सार यह है कि परोपकाराय पुण्याय, सबसे बड़ा पुण्य यह है कि आप परोपकार करें, और सबसे बड़ा पाप यह है कि पर पीड़नम, दूसरों को पीड़ा दे। जितने पुराण वेद है उसमें पाप और पुण्य की बात है ना, तो बहुत सारे पाप है और बहुत सारे पुण्य है, लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरों को पीड़ा देना, और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? दूसरों का उपकार करना, परोपकार करना। धर्म सार्थक करी कर परोपकार, उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है पत्रिका में। वो कहते हैं कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, जो दूसरे के दुख, दूसरे को कष्ट दुख देना, उसके सिवा दूसरी अधमता कोई है ही नहीं। उसी व्यास जी के वाक्य को उन्होंने अवधी भाषा में लिखा, तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक, जिसमें भगवान 26 गुण बताते हैं, 8 से 12, अहिंसा, शांति, आर्जवन, अशोचत्वम, जो है ना, जन्म मृत्यु, ये सब आते हैं 8, 3 श्लोक साथ में है, 13वें अध्याय के 8, 9, 10, 11, 12, 5, 4 श्लोक साथ में है। तो उसमें अहिंसा शब्द आया है, तो अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अहिंसा के ऊपर बड़ा सुंदर लिखा है। तो उसमें वो कहते हैं कि अपनी वाणी से भी दूसरों के हृदय को कष्ट देना, यह भी हिंसा है। हिंसा मतलब गोली से उड़ा देना, एनकाउंटर का, यही हिंसा है तो नहीं है। हिंसा मतलब दूसरों को कष्ट देना, चाहे वाणी से दो या अपने आचरण से दो, कष्ट देना। और एक ही वैष्णव है सामने वाला, तो वैष्णव को कष्ट देना मतलब सीधा भगवान पर अटैक करना, क्योंकि भगवान के हृदय, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम है ना, वो भक्तों के हृदय में तो साक्षात भगवान विराजते हैं, उनके हृदय को कष्ट देना। लेकिन भक्त लोग को इन बातों पर विचार करना चाहिए, सूक्ष्मता, जो गहना पहने उनको उतारना चाहिए इन हिंसा का अभिमान का, ये सबसे खराब वस्तु है दोनों। तो प्रभुपाद जी ने लिखा है वहाँ पर, दूसरों को दुख देना, हृदय कष्ट हो जाना, ये भी एक हिंसा ही है, सूक्ष्म हिंसा है, भक्त लोग उससे भी बचते हैं। हमेशा मीठे वचन बोलते हैं, भगवान के उद्धार का बोलते हैं, और मीठे वचन का ऐसा अर्थ नहीं है केवल मस्का पॉलिश माखन लगाना, निस्वार्थ वचन बोलते हैं, वो जो बोलते हैं उसमें उनका स्वार्थ नहीं होता, सामने वाले व्यक्ति का शुभ मंगल, उद्धार, कल्याण कैसे हो, यही भावना होती है, इसी को पवित्र वचन कहे जाते। पवित्र वचन मतलब एकदम मीठा मीठा बोलना, शुद्ध बोलना, इतना ही नहीं है, ये तो बाहरी बात है। वचन पवित्र तभी माने जाएंगे जब आपका उसमें कोई स्वार्थ ना हो और उनका उद्धार, हित, मंगलकारी वचन हो, ये सार वचन का होता है। जैसे सुखदेव जी के भागवत की इतनी महिमा है, क्यों? क्योंकि जगत जगत मंगल के लिए उन्होंने लिखा है, भगवत भी लोक मंगलम है ना, निस्वार्थ वचन है व्यास के सुखदेव, उसे नहीं कि उनको उनके द्वारा कुछ धन चाहिए या धन प्रतिष्ठा, इसके लिए नहीं वो लोग कर रहे हैं ना, जनता के हित के लिए। संसारिणा करुणया, सुखदेव जी की स्तुति में वही पुराण क्यों कहा उन्होंने, जीवों के प्रति अति करुणा के कारण, संसारिणा करुणया पुराण। देखिए, विचार करिए इन बातों पर। क्रोधी, क्रोध एक सबसे बड़ा दुर्गुण है। भक्ति राज्य में प्रवेश पाने के लिए रूप गोस्वामी ने 6 वेगों की व्याख्या की है, उसमें क्रोध भी एक वेग है, उसको शांत करना, रजोगुण का परम लक्षण। गीता में भगवान 3 बातों को त्यागने को कहते हैं, उसमें भी एक क्रोध है तो ना, कामत, काम, क्रोध तथा लोभ, तस्माद एतम त्रयम् भुजे, 16वें अध्याय में है, 21-22 नंबर। निद्रालस्य हतः, निद्रा और आलस से भरा हुआ प्रत्येक जीव, मनुष्य देखा जाता है, थोड़ा साधना करते ही, अभी हम अभी अंदर गए थे, मैं बोला कुछ पढ़ो टीका, तो खुला का खुला रह गया कंधे, ऐसे शंख बजा दे, है ना। हम लोग साधना में लगे हैं लेकिन रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कितना होता है, पटका देती है। कितना भी भारी पहलवान हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी विद्वान हो, लेकिन फटाक से देखा गया ना, भारी भारी विद्वानों को देखा है, प्रवचन करते तो ऐसा लगता है कि बाप रे, व्यास जी इनके हृदय में प्रकट हो गए, और वही व्यक्ति कुछ दिनों, कुछ घंटों बाद निद्रा देवी ने हत्या अटैक कर दिया उसको। कोई व्यक्ति कितना ही पहलवान हो, 300 किलो 400 किलो भी उठा लेता है, किसी को भी मार देता है, लेकिन निद्रा उसको भी फटाक से सुला दी, खराटे इतना लेता है, बाजू वाला भी जल गया, वही व्यक्ति, वही पहलवान देखा गया है। तो ये एक भारी आलस जो है, चाणक्य पंडित ने यहाँ तक कहा है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, हम लोग ये सोचते कि ये हमारा दुश्मन है, बाकी कोई हमारा आलस यही मनुष्य का सबसे आलस्य ही मनुष्याणाम परम रिपोस रिपो माने शत्रु। तो भक्ति में जिनको प्रमाद आलस्य निद्रा तमोगुण ये तमोगुण के लक्षण भगवान चौदह जय गीता में कहते। तो हत हत माने वश हो जाना, मैं निद्रा और आलस के वश हुए। महाराज जी बड़ी सुंदर व्याख्या करते थे, एक बार कहते थे कि जिनको भगवान को पाना है मानव शरीर में निद्रा हार विहार का दिविजित जाते है ना, इसके षडगो निद्रा के ऊपर और आहार के ऊपर और विहार के ऊपर, विहार माने घूमना और आहार माने आहार तो जानते ही है, इनके ऊपर विजय था इन लोग और हमारे ऊपर ये लोग विजय किए हुए हमारे जीत के ऊपर। तो भक्ति में ये बड़ा बाधक है। तो व्याख्या कर रहे थे, लक्ष्मण जी की याद दिलाते थे, कहते थे लक्ष्मण जी सोए नहीं राम की सेवा में। उनको सुमित्रा जी ने कहा था कि सपने हो ना, तुम जा तो रहे हो राम के साथ, लेकिन राग मद मोह स्वप्न में भी काम या क्रोध या अभिमान या निद्रा के वश में होना नहीं। सेवा तो तभी कर पाओगे, सेवा कर रहे लेकिन अभिमान आ गया तो क्या सेवा है, निद्रा आ गया क्या सेवा करो, सेवा का फल प्राप्त करना है तो सपने हो ना इनके बस हो, स्वप्न में भी इनके वश में मत होना अगर भगवान की सेवा में लगे रहना है तो, नहीं तो ये उड़ा के फेंक देंगे ये दुर्गुण को। तो महाराज जी कहते थे कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक निद्रा का और नारी का त्याग किया। इस भवसागर के पार वही व्यक्ति जाएगा भगवत धाम जो जीवन में निद्रा और नारी दो को त्यागे, नहीं तो इनका गुलाम कभी भगवत प्राप्ति कर नहीं पाएगा, निद्रा का गुलाम या नारी का गुलाम ये कभी अपना उद्धार कर ही नहीं सकता, वो केवल जन्म मृत्यु के चक्र और काटेगा और अंत तो नरक जाएगा। राम के चरणों को कृष्ण के धाम को वही पाएगा जो निद्रा और नारी को जीत ले। जितेंद्रिय जितस्वास है भागवत में भी आया है, जो जितेंद्रिय है अपने योग से बल के ऊपर जीत लिया है अपने वेगों को, वाचो मनसो क्रोध सब पृथ्वी शिष्य उसी भाव उसी बात को सुकार्य विरत। अच्छे अच्छे बहुत कार्य है, सुकार्य मतलब सुंदर कार्य सत कार्य, जैसे नाम जप करना, भागवत पढ़ना, सुनना, सेवा करना, ये सुकार्य है ना, लेकिन उसमें तो मैंने विरक्त वैराग्य ले लिया है सुकार्य से हमको वैराग्य हो गया है, और अकार्य और जो गलत काम है सांसारिक काम उसमें तो नंबर वन उद्योगी आमी, कोई किसी को मारना काटना देखना पुनः सुनना हो तो 4:30 बजे भी जगेंगे तो जाएंगे, भौतिक पदार्थ कुछ प्राप्त करना हो या कुछ, और भगवत सुकार्य में वैराग्य विरक्त, अच्छे कामों में मैं आलसी बन गया विरक्त, ऐसा नहीं कि आलसी हूँ पूरा, कहीं गलत काम करना हो सांसारिक काम करना है तो आलसी क्या है, देखते ना लोग कितना काम, बम्बई में हम लोग देखते 5 बजे भी हम लोग जाते तो ट्रेन पूरी भरी हुई, सुबह सुबह ऐसा नहीं लोगों जगते नहीं, बहुत जगते हैं, बम्बई में 70% लोग 4-5 बजे जगते हैं, आपको पता है बस पकड़ने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए, और कहाँ कहाँ से आते हैं, कुछ लोग तो वापी और सूरत से बम्बई अप डाउन करते हैं बोले लाइन में डेली, हम लोग भी तो नहीं करते, भक्त लोग भी नहीं जाएगा हर रोज बोलेगे कीर्तन में नहीं जाएगा, वो लोग करते मतलब तपस्या ज्यादा करते हैं कि नहीं, क्या आलसी है वो लोग, गाड़ी में आलसी व्यक्ति गाड़ी चढ़ ही नहीं सकता, उद्योगी होना चाहिए लेकिन अकार्य उद्योगी नहीं नहीं आप तो बड़े अच्छे सुंदर प्रभु जी हो, तिलक करते हो, माला करते हो, सब तो करते हो, बोले हो तो दूसरों को दिखाने के लिए करते हो, प्रतिष्ठा लागी या साठ्या चरण मैं दुनिया में मेरा नाम हो जाएगी, ये तो बहुत अच्छे भक्त है, मेरा नाम प्रतिष्ठा हो जाए इसलिए मैं बराबर रहता हूँ बाहर से, लेकिन साठ्य आचरण मतलब कपट कर रहा हूँ अपने को, साठ का एकदम शाणा होता है अपने, वो शाणो शाणा मतलब अंदर से कुछ बड़ा चतुर बनता हूँ, प्रतिष्ठा के लिए मैं ऐसा सुंदर आचरण करता हूँ, सिंपल सीधा साधा भोला भाला लगता हूँ, दूसरे लोग भी हमको ऐसा कहते भी है। लेकिन लोभ हत सदा कामी, भगवान आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लदन पर ही लोभ भरा है और काम भरा है, लोभ और काम से मेरा हृदय परिपूर्ण है, लेकिन बाहर से मैं ऐसे दिखना नहीं देता। बाहर से तो ऐसा लगता है कि एकदम साधु हूं, काल नैनी की तरह। ये जन दुर्जन सज्जन वर्जित, दुर्जनों के संग में पड़ा हूं और सत्संग सज्जनों से वर्जित, उनको छोड़ दिया हूँ। अपराध निरंतर निरंतर रात दिन अपराध करता रहता हूँ। शुभ कार्य शून्य सदा अनर्थ मना, मेरे मन में सदा अनर्थ भरे रहते हैं और नाना दुखे जर जर, इसीलिए मैं एक अनेक प्रकार के त्रिताप को सह रहा हूँ, दुख जह रहा हूँ। और अब तो क्या हुआ, वार्धक्य एकन बड़ा सुंदर शब्द, वार्धक्य एकन मतलब इतना दुख तो था ही प्रभु, अब तो बुढ़ापा भी आ गया है, अब तो दुखने लगे हैं पांव सर दांत सब दुख रहा। एक तो ये दुख था संसार का, ऊपर से शरीर का दुख भी अभी चालू हुआ है बुढ़ापे के कारण, और उपाय विहीन, और अभी कोई चांस नहीं, क्योंकि डॉक्टर लोग ने भी कह दिया कि ये इतना ही होगा, अब इनको सही है और इंतजार करिए, मन उपाय भी नहीं रहा है कुछ भी। रोग का भी उम्र के हिसाब से कुछ दिनों तक उपाय होता है, जब अंदर से ही लाइन कट जाए फिर मशीन काम नहीं करेगा कान का, कुछ टाइम तक होता है ना, मशीन लगा के भी कुछ टाइम सुन सकते हैं। जब इंद्रियों से अंदर से भगवान ही कनेक्शन हटा ले, फिर वो मशीन क्या पूरा डाल दो उसको मशीन के अंदर, तो भी वो सुनेगा नहीं, तब उपाय कोई रहा नहीं, क्योंकि बुढ़ापे ने शरीर को घस ग्रस लिया है। द्युतंचस्य जराकृति ऐसा कहते हैं ना दशरथ जी, यहाँ पर देखे थे सफेद बाल, मन हूँ जरटपन अस उपदेश ऐसा लग रहा है कि उपदेश दे रहा है बुढ़ापा की, अभी मुकुट उतारो राम को दो, ऐसा गोस्वामी जी। तो कृतिक भक्त ने उसके ऊपर लिखा है कृतांतस्य दूति जराकर्ण मूले, ये जो काल है ना मृत्यु, उसका एक दूत है, उसका एक सेवक है, और वो है बुढ़ापा। पहले बुढ़ापा आता है और कान के पास मैसेज देता है कि तुम अभी तुम्हारा पत्ता कटेगा। कृतांतस्य दूति, कृत अंत जो काल है उसकी दूति एक सेवक है, जरा कर्ण मूल है, कान के पास आकर बालों के द्वारा वाइट होकर मैसेज देती कि तुम्हारा पत्ता अभी कटने वाला है। मतलब काल बुढ़ापा मैसेज देता है, फिर काल खा जाता है शरीर को। तो उसमें कहते परस्त्री परद्रव्य वांछा त्यजत्वम, हे मूर्ख अब तो धन की आसक्ति छोड़, क्योंकि शरीर तुम्हारा जा रहा है, अभी भी नहीं लग रहा है कि धर्म में तू सेवा करूं, अभी भी उसके लिए चिपका हुआ है। काल काल तुम्हारा तुमको खाने वाला है और अभी उसका मैसेंजर सेवक मैसेज देने आया है ये बुढ़ापा कि तुम जाने वाले हो, तो अब तक पूरा जीवन तो अभी सार्थक करना है, तो धन को छोड़ो। पर स्त्री पर धन व्यांछा त्यजत्वम, बुढ़ापे में ये काल का जो सेवक है वो बुढ़ापा मैसेज देता है, संदेश देता है कि छोड़ो। पर स्त्री पर धन व्यांछा त्यजत्वम, पर स्त्री और पर धन की इच्छा को त्यागो, और भजस्वम रमानाथ पदार विंदम, और रमा के पति भगवान विष्णु लक्ष्मी के जो प्राण धन है, भजस्वम रमानाथ पदार, रमानाथ के चरणार विंद का भजन करो, क्योंकि अब काल खाने वाला है तुम। बुढ़ापा ये मैसेज देता है, लेकिन कौन सुनता है, वाइट बाल हो जा रहे तो काला कर देता है, क्या क्यों कर रहा है कि नहीं, वो मैसेज तो सुनेगा नहीं, उल्टा उसका रंगेगा। इसलिए भक्त लोग कभी कभी राइट रहना देते कि कम से कम याद रहे, हमारे हाथ में है नहीं। लोग कहते ना मैं ये कर दूंगा ये कर लूंगा, हमारे हाथ में हमारे बाल भी नहीं है। हमारा शरीर हमारे हाथ में नहीं है। इसको भक्ति में ठाकुर ने गोपीनाथ निवेदन करो उसमें भी कहा है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये शरीर आपकी माया ने घेर लिया है, क्या कर सकते, आप ही कल्याण मंगल कर सकते। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना भक्ति विनोद ठाकुर, यद्यपि परम शुद्ध वैष्णव थे तथापि दैन्य प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मेरे को बुढ़ापे ने इतना ग्रस लिया है, अब कोई उपाय नहीं रहा है और मैं आपका दीन अकिंचन सेवक हूँ। भक्ति विनोद प्रभु चरणे करे दुख निवेदन, यह दुख निवेदन कर रहा है भक्ति विनोद ठाकुर के, भगवान आप ही शरण्य है, आप ही जीवों के परम मंगल करने वाले हैं, दुख को सुनते हैं। दुनिया वाले दुख देते हैं और भगवान दुख सुनकर दुख का शमन करते हैं, भगवान का ये स्वभाव है। तो कितनी सुंदर दैन्य प्रार्थना है। वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर का ये अमार जीवन सदा पापे रहते, ये जो दैन्य है प्रार्थना है, वो हमारा एक दर्पण है। क्या है हमारे लिए, क्या है ये, भजन नहीं है, ये आईना है, कांच है, जिसमें हम कैसे है वो दिखता है। यही भाव है, भक्त लोग कांच में देखते हैं अपने आप को। तो भक्तों को अपने आप को देखने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन जो है ये कांच, और महीने में हफ्ते में इन कांच में देखना चाहिए हम कैसे हैं, दिख रहा है ना सबको, ये व्याख्या हुई तो कहाँ कहाँ क्या है ये दिखता है। यही वास्तविक कांच है जो हमारे अंतकरण को भी प्रकाशित कर देता है, अंदर की बातों को ही दिखा। कितना सुंदर लेंस है, देखिए फ्री में दे रहा है, जैसे एक्सरे बड़ा होता है शरीर के अंदर की बातों को, तो उसमें कितना पैसा लेता है, फिर भी सही बात तो बताता नहीं। लेकिन ये भक्ति विनोद ठाकुर का भजन एक्सरे मशीन का बाप है, हमारे अंतकरण को, अंतकरण के भावों को देख लेता है, दिखा देता है कि तुम ऐसे हो। अब इनको हमें शांत करना है, इन सारे दुर्गुणों से हमें मुक्त होना है, शुद्ध होना है। इसीलिए व्यास जी ने अनर्थ उपशमो साक्षात, इन सारे दुर्गुण अनर्थ को जड़ से मूल से निकालने के लिए सात्वत संहिता, ये भागवत संहिता की रचना की, भागवत कथा। और इन भागवत कथा को कोई सुनेगा तो इनके ये सारे दोष दुर्गुण सब निर्मूल हो जाएंगे। भगवान नाम और भगवत कथा, चेतो दर्पण, चित्त रूपी दर्पण में जमा हुई धूल को स्वच्छ कर देता है हरि नाम। उसी तरह कृष्ण कथा, पुण्यम श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थो हि अभद्राणी विदनोति, भगवान की कथा और भगवान का नाम ये हमारे मन तन बुद्धि आत्मा सबको परम पवित्र करने के सरल और श्रेष्ठ साधन है। तो आइए आज के इन श्लोक के ऊपर दृष्टि करें, जिसमें यही बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से हमारे शोक मोह भय सब नष्ट हो जाते हैं और भगवान के चरण कमलों की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। कि क्या करने से, कृष्ण की कथा सुनने से। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के सातवें अध्याय का सातवां श्लोक सार श्लोक है, सबको कंठस्थ करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कई जगह तात्पर्यों में इसको कोट किया है और अपनी व्याख्या प्रवचनों में व्याख्यानों में भी कई बार इन श्लोकों पर प्रभुपाद जी बोले हैं, ये श्लोक पर। तो भगवद गीता का भी सातवें अध्याय का सातवां श्लोक याद होना चाहिए, 7.7 आप लोग को याद है कौन सा है, ऐसे श्लोक याद है लेकिन नंबर से याद नहीं होगा। भगवान कहते हैं मई परंतरम नान्य अस्तिम किश्चित दस्ति धनंजय, है ना, मेरे से परम श्रेष्ठ और कोई नहीं है भगवान गीता में कहते हैं। तो वो सातवें का सातवां है और भागवत में सातवें अध्याय का सातवां, तो ये भी यस्यावे श्रीमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उपद्यते पुंसा शोक मोह। तो आप लोगों का ये लेसन है साथ साथ गीता और साथ साथ इसको आपके साथ साथ रखिए सत साथ को, क्योंकि 7 दिनों में मरना है परीक्षित, है ना, 7 ही दिनों में मरना है ना, 8वां तो है नहीं, संडे मंडे जो भी है शायद। तो इन 7 से हमारा बच्चा कनेक्शन है 7 डेज, तो 7 का अंक जो है इसके ऊपर मैं थोड़ा विवेचन चिंतन दे रहा हूँ कि हमें तो कोई भी वाक्य हो या कोई भी अंक हो या कोई भी शब्द हो कृष्ण से कनेक्ट करना है, कृष्ण स्मरण सतत होना चाहिए, इसलिए मैं इस बात को कहा। आइए प्रभुपाद जी के अनुवाद तात्पर्य को हम लोग दोहराए अच्छी तरह से। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, ठीक से बोलिए, श्रूयमाणायाम श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उपपद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। यस्या वै
श्रूयमाणायाम
कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुपद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। यस्या वै
श्रूयमाणायाम
कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुपद्यते पुंसः शोकमोह भयापः।
यस्यां वै
श्रूयमाणायां
कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुपद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। यस्यां वै
श्रूयमाणायां
कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुपद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। यस्यां वै
श्रूयमाणायां
कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुपद्यते पुंसः शोकमोह भयापः।
यह वैदिक साहित्य
वै
निश्चय ही
श्रूयमाणायां
मात्र श्रवण करने से कृष्णे भगवान कृष्ण में परम पुरुषे भगवान में भक्ति ही
भक्ति
की भावनाएं उपद्यते अंकुरित होते हैं पुंसः जीव का शोक संताप मोह मोह भय डर अपहा भगाने वाला नष्ट करने वाला। अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। यह वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तात्पर्य, इंद्रिया तो अनेक है लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त हो रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण है। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का यह संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। भक्तिमय सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। प्रेम शब्द ऐसा है जो प्राय स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सके। भगवद गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक है। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुष वाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतएव भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतएव ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है और इस प्रकार उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें त्वरित संपर्क होना। यह दिव्य शब्द ध्वनि उतनी ही प्रभावशाली होती है कि वह समस्त उपयुक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा इस प्रकार की जटिलता अर्थात उलझन उत्पन्न कर लेता है और भौतिक देह के भ्रामक बंधन को वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों में जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी मोह अर्थात भ्रम अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता है और भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है और इस तरह मनुष्य मनुष्य के बीच के प्रेममय संबंध को संबंध में भी बढ़ जाता है। श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से भौतिकता की यह जुटी जटिलता दूर हो जाती है, समाज में वास्तविक शांति का शुभारम्भ होता है, जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा तथा राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेता मनुष्य तथा मनुष्य राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच शांति की स्थिति की कामना करते हैं, लेकिन साथ साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण मोह तथा भयग्रस्तता बनी रहती है। अतएव राजनेताओं के शांति सम्मेलनों से समाज में शांति नहीं ला जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवतम में वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती है। ये मूर्ख राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहे, लेकिन वे इन्हें प्राप्त करने में विफल रहेंगे। जब तक हम कृष्ण के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापना नहीं कर लेते, तब तक शरीर को स्व मानने का मोह भ्रम बना रहेगा और इस तरह भय भी बना रहेगा। जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध है और श्री वृंदावन नवदीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों में भक्तों के निजी अनुभवों से सैकड़ों हजारों प्रमाण मिलते हैं। कौमुदी कोश में भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदानंदन तथा परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए हैं। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख तथा मोह तथा भय को लांग करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसने वास्तविक रूप में विनित भाव से श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना है, उनके लिए ये व्यावहारिक परीक्षाएं हैं। यस्यावे श्रीयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुपद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक तथा मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
इसके से प्रवचन कल करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय।